आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के दौरे पर रवाना हुई। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नए फौजदारी कवानीन में सजा के बजाय इंसाफ पर तवज्जो दी गई है। भारतीय महकमा मौसमियात ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश में हुकूमत के इस्तीफे के मुतालबे पर ताजा झड़पों में कम से कम 55 अफराद हलाक हो गए। और पेरिस ओलंपिक्स में भारत की हॉकी टीम पेनल्टी शूटआउट में बर्तानिया को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के दौरे पर आज शाम फिजी रवाना हो गई। अपने दौरे में वो भारत नजाद लोगों के साथ दोतरफा मुलाकातें करेंगी। तफसील हमारे नामानिकार से।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के दौरे पर आज शाम 7:45 पर पालम के एयरपोर्ट स्टेशन से रवाना हुई। भारत के किसी सदर का फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते का यह पहला दौरा होगा। अपने एक हफ्ते के दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू इन मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और वसत देने के लिए दो तरफा मीटिंगें करेंगी। वो इन तीनों मुल्कों में रहने वाले भारत नजाद लोगों के साथ खुसूसी मुलाकातें भी करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे का मकसद इन तीनों मुल्कों के साथ तारीखी रिश्तों को मजीद मजबूत करना और मशरिक नवाज पॉलिसी के तहत भारत के अहद का इआदा करना है। उर्दू खबरों के लिए मैं जमीर रजवी।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रोति और ई समन निजाम का इफ्तिताह किया। इनसे फौजदारी निजाम इंसाफ की राह हमवार होगी। इस मौके पर अपने खिताब में जनाब शाह ने कहा कि मुल्क का फौजदारी निजाम इंसाफ अब लोगों को तेज रफ्तार और मुकर्रा वक्त के अंदर इंसाफ फराहम करने में बड़ा कदम साबित होगा। वजीर दाखिला ने कहा कि नए फौजदारी कवानीन से भारत में बरतानवी कवानीन के दौर का खात्मा हो गया है और फौजदारी निजाम इंसाफ पूरी तरह स्वदेशी हो गया है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि ये कवानीन आईन की रूह के ऐन मुताबिक हैं, जो अवाम को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम करेंगे। जनाब शाह ने मजीद कहा कि नए फौजदारी कवानीन में सजा के बजाय इंसाफ पर जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में आज सुबह एक मंदिर की दीवार मुनहदम हो जाने से 9 बच्चे हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। ये सानहा शाहपुर में हरदौल बाबा मंदिर में एक मजहबी तकरीब के दौरान पेश आया। सागर के कलेक्टर दीपक आर्या ने बताया कि जख्मियों को निकाल लिया गया है और उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि जाए वाकया से पूरा मलबा हटा दिया गया है। रियासत के वजीर आला मोहन यादव ने उन कुनबों के लिए गहरी ताजियत का इजहार किया है जिनके मासूम बच्चों की जाने गई हैं। उन्होंने हुकूमत की तरफ से हलाक होने वाले बच्चों के कुनबों के लिए 4-4 लाख रूपये की मदद दिए जाने का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में दीवार गिर जाने के वाकये में हलाक होने वाले हर फर्द के करीबी रिश्तेदारों को वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रूपये की इमदाद दिए जाने का ऐलान किया है। जख्मियों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि दीवार गिर जाने के वाकया अंदोहनाक है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इंडियन क्लासिकल डांसर पद्म विभूषण डॉ यामिनी कृष्णमूर्ति के कुनबे और उनके परस्तारों के तहत ताजियत का इजहार किया है। डॉ यामिनी का कल जईफुल उमरी के सबब इंतकाल हो गया था। वो 84 बरस की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि इंडियन क्लासिकल रक्स में उनकी महारत और उसके लिए खुद को वक्फ कर देने से नस्लों को तहरीक मिली है और उन्होंने मुल्क के सकाफती मंजरनामे पर एक दायमी नक्श कायम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि डॉ कृष्णमूर्ति ने मुल्क की विरासत को और ज्यादा मालामाल बनाने के लिए अजीम काम किया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर आज सुबह रुकी हुई एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में आग लग गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मजकूरा रेलगाड़ी प्लेटफार्म नंबर 4 पर रुकी हुई थी। आग लगने के बाद अहदेदारों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुसाफिरों को बाहर निकाला। इस वाकये में 2 AC कोच जल गए। अहदेदारों ने बताया है कि किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है और कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। केरला की वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने मीडिया से अपील की है कि वो वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के हादसे में बच जाने वाले बच्चों से सानहे की तफसीलात के बारे में बात न करें। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अफसोसनाक वाकये के बारे में बार बार बात करने से बच्चों के जहन पर गहरा असर पड़ेगा और मुस्तकबिल में भी उन्हें मजीद दिमागी और जज्बाती सदमे की याद सताती रहेगी। मोहतरमा वीना जॉर्ज ने मीडिया को राय देते हुए कहा कि उन्हें बच्चों से उनके कुनबे के दीगर अरकान, उनके दोस्तों और तबाहशुदा स्कूल के बारे में बात करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे की शनाख्त उसके वालिदैन या सरपरस्त की इजाजत के बाद ही जाहिर करनी चाहिए। दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा है कि मरकजी बजट 2024-25 में इस तरह की मालियाती गुंजाइशें मौजूद हैं जिनसे बिहार की तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी। पटना में आज अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए जनाब राय ने कहा कि रियासत में सैलाब से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रूपये तफवीज किए गए हैं जिनसे हर साल सैलाब से तबाह होने वाले शिमाली बिहार को काफी मदद मिलेगी। मरकजी वजीर राय ने मजीद कहा कि मरकज ने बिहार के लिए 15,000 करोड़ रूपये का बिला सूदी कर्ज भी मंजूर किया है जो बिहार के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आसाम के मोरीगांव में टाटा के सेमीकंडक्टर यूनिट की तामीर का काम शुरू हो गया है। नई दिल्ली में तफसील बताते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि यह यूनिट 27,000 करोड़ रूपये की सरमायाकारी से कायम किया जाएगा जिससे 15,000 बराह रास्त और 11,000 से 13,000 बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। मरकजी वजीर ने बताया कि यह बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा जो रोजाना 4,83,00,000 सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार करेगा। दिफाई फौज के सरबराह जनरल अनिल चौहान कल नई दिल्ली में फौज की तीनों शाखों की आला सतह की माली मामलात से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुसल्लह फौजों के माली मामलात में हम आहंगी में इजाफा करना है और इसमें वजारत दिफा के सीनियर अफसरान, दिफा से मुतालिक खातों के कंट्रोलर जनरल और दीगर शख्सियतें शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस का राब्ताकार मरबूत अमले का सदर दफ्तर है। ये कॉन्फ्रेंस मुसल्लह फौजों को मरबूत बनाने के लिए जारी मुहिम के मकासद के तहत मुनाकिद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान दिफा से मुतालिक मालियात और दिफाई साजो सामान खरीदने में दरपेश चैलेंजों से निमटने के तौर तरीके तलाश करने वाले मुख्तलिफ तरीकों के नजरियात को समझने के लिए तबादले ख्याल किया जाएगा। दिफाई फौजों के माली मुशीर और दिफाई साजो सामान की खरीदारी के डायरेक्टर जनरल भी खरीदारी के अमल को तेज रफ्तार बनाने में उनकी तंजीमों के रोल और अभी तक किए गए इकदाम पर खसूसी तकरीर करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने हवा के कम दबाव के सबब मगरबी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में आज कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। उधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में भी दूर दूर तक गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में इस हफ्ते के दौरान कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की है। 6 और 7 अगस्त को उत्तराखंड में भी कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। मशरकी और शिमाल मशरकी भारत में इस हफ्ते के दौरान गरज चमक के साथ दूर दूर तक हल्की से औसत बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में इस महीने की 7 से 9 तारीख तक, आसाम और मेघालय में आज और इस महीने की 6 से 9 तारीख तक कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी कल इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। बांग्लादेश में ढाका और दूसरे मकामात पर मुजाहिरीन, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के अराकीन और बरसर इख्तदार जमात की हिमायत याफ्ता तंजीमों के अराकीन के दरमियान आज ताजा झड़पों में कम से कम 55 लोग हलाक हो गए। इन झड़पों में सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए हैं। तफसीलात हमारे नमानिगार से।
बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान हुकूमत ने आज इतवार के रोज ढाका और मुल्क के दीगर मकामात पर शाम 6 बजे से गैर मुय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। हुकूमत ने अवाम की हिफाजत के नुक्ते नजर से अगले 3 दिन पीर, मंगल और बुध के रोज अवामी तातील का भी ऐलान कर दिया है। मुजाहिरीन ने इतवार के रोज मुल्कगीर अदम तआवुन की तहरीक शुरू कर दी है और हालिया कत्ल के खिलाफ एहतजाज के तौर पर अपने एक नुकाती मुतालबे हुकूमत के इस्तीफे पर डटे हुए हैं। इस दौरान बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने आज इतवार के रोज सुबह अपनी रिहायशगाह गनू भाबन पर हिफाजती उमूर से मुतालिक कौमी कमेटी की मीटिंग मुनाकिद की। ढाका से नवल संग परमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
सूडान में शिमाली दारफर की राजधानी अल फाशिर में नीम फौजी तेज रफ्तार दस्तों आरएसएफ की तरफ से किए गए एक बख्तरबंद हमले में कम से कम 23 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए। मकामी खबरों के मुताबिक आरएसएफ ने कल अल फाशिर के जनूबी इलाके में तंबासी सेहत मरकज पर हमला किया। अल फाशिर में सूडान की मुसल्ला फौजों एसएएफ और आरएसएफ के दरमियान 10 मई से जबरदस्त झड़पें चल रही हैं। सूडान में एक साल से भी ज्यादा अरसे से खाना जंगी चल रही है, जिसमें फौज एक नीम फौजी ताकतवर ग्रुप आरएसएफ से लड़ रही है। यह ग्रुप कभी सूडान की हुकूमत के तहत काम करता था, लेकिन फौज के जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान और आरएसएफ के रहनुमा मोहम्मद हमदान दगालू के दरमियान तनाजे के सबब हुकूमत से अलग हो गया था। इस जानलेवा लड़ाई में अभी तक कम से कम 16,650 लोग हलाक हो चुके हैं। अमरीका और बरतानिया ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो इसराइल और हिजबुल्ला और वसी सरहदी जंग के खदशे के बीच लबनान से फौरी तौर पर निकल जाएं। लबनान में अमरीकी सिफारतखाने ने कहा है कि हालांकि कुछ एयरलाइंस ने मुल्क में परवाजें मुअत्तल कर दी हैं, लेकिन परवाजें अब भी दस्तयाब हैं और शहरी मशरिक वुस्ता के मुल्क छोड़ने के लिए दस्तयाब कोई भी परवाज बुक कर सकते हैं। स्वीडन ऐसा पहला मुल्क है जिसने बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर बैरूत में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया है। जनूबी कोरिया सख्त गर्मी की गिरफ्त में है। वहां अस्पतालों में इस हफ्ते गर्मी से बीमार पड़ने वाले तकरीबन 400 लोगों का इलाज किया गया है। हुकूमत की तरफ से आज जारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर के 507 अस्पतालों ने पीर से जुमे के दरमियान गर्मी की वजह से बीमार पड़ने वाले 384 मरीजों के इलाज की खबर दी है। एजेंसी ने खबर दी है कि इस मुद्दत के दौरान कम से कम 11 अफराद की जाने गई हैं, जिसके बारे में शुबा है कि यह बात शदीद गर्मी की वजह से हुई है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की हॉकी टीम पेनल्टी शूटआउट में बरतानिया को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। अलबत्ता बैडमिंटन में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में हार गए। लक्ष्य सेन पहले गेम में अपनी अच्छी कारकर्दगी के बावजूद 20-22 से शिकस्त खा गए, जबकि दूसरे गेम में उन्होंने 6-0 से जीत हासिल की थी। अलबत्ता अब वो कांसे के नमकों के लिए मलेशिया के ली जी जिया के साथ खेलेंगे। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन खवातीन के 75 किलोग्राम के जुमरे में क्वार्टर फाइनल में हार गईं। उन्होंने चीन की ली चियांग के हाथों शिकस्त खाई। निशानेबाज विजय वीर सिद्धू और अनिश भनवाला ने 25 मीटर की मर्दों की रैपिड फायर पिस्टल के पहले मरहले में क्वालिफाई कर लिया है। एथलेटिक्स में पारुल चौधरी 3000 मीटर की स्टीपल चेज मुकाबले में 8वें नंबर पर रहीं। पेरिस ओलंपिक्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सोने का तमगा जीता है और गोल्ड स्लैम मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने मर्दों के टेनिस सिंगल्स के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को 7-6, 7-6 से हराया। नोवाक जोकोविच ओलंपिक टेनिस मुकाबले में 1988 के बाद 37 साल की उम्र में सोने का तमगा जीतने वाले सबसे उम्ररसीदा खिलाड़ी बन गए हैं। मर्दों के क्रिकेट में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान जारी है। यह मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। 241 रन के निशाने का पीछा करते हुए ताजा खबरें मिलने तक भारत ने 35 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान श्रीलंका ने 50 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाए। इस सीरीज का पहला मैच बराबरी पर खत्म हुआ था, इसलिए दोनों टीमें आज का मैच जीतने की कोशिश कर रही हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सर्वज मुरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों फिजी न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के दौरे पर रवाना हुई। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नए फौजदारी कवानीन में सजा के बजाय इंसाफ पर तवज्जो दी गई है। भारतीय महकमे मौसमियात ने राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश में हुकूमत के इस्तीफे के मुतालबे पर ताजा झड़पों में कम से कम 55 अफराद हलाक हो गए। और पेरिस ओलंपिक्स में भारत की हॉकी टीम पेनल्टी शूटआउट में बरतानिया को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।